नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर जताई चिंता, कहा भारत बातचीत के माध्यम से विवादों के समाधान का पक्षधर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से नई दिल्ली में की भेंट, राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत मांगा वित्तीय पैकेज। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में हिमाचल को अगले वित्त वर्ष के बजट में होगा 20,365 करोड़ रूपये का लाभ। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति बनाएगी राज्य सरकार। और कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में गांधी शिल्प मेला शुरू, 18 राज्यों के शिल्पकार ले रहे हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी विवादों का समाधान करने का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भेंट कर राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वित्तीय पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी को बंद करने से प्रदेश की वित्तीय हालत पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं, लेकिन हिमाचल की अर्थव्यवस्था इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्री जी से मैं आज मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा जो आरडीजी बंद की गई है उसका हिमाचल के बजट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। करीबन 15% के करीब बजट में इम्पैक्ट होगा। हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए और निश्चित रूप से प्रदेश की कई योजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस राज्य का रेवेन्यू बहुत कम होता है, व्यय ज्यादा है, इनकम कम है, उस घाटे के लिए ही आरडीजी का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
केंद्रीय संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामले मंत्री किरेन रिजिजू हिमाचल के अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद आज सुबह कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान चंबा जिले में अनेक विकास कार्यों के शिलान्यास किए। हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवाल पर किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान व इसराइल के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए इन देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
देश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे, इतना व्यापक सहायता करते हैं। तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशन्स होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में हिमाचल को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 20,365 करोड़ रूपये का लाभ होगा। उन्होंने आज नाहन में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें स्वरोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से राजनीति के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया है।
जिला के स्तर के ऊपर, उसके बाद नेशनल और उसके बाद स्टेट और उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करके देश की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूं हमारा देश जो युवा देश है, जहां 65% आबादी जो युवाओं की है, इस देश को आगे ले जाने में, इस देश को विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस युवा संसद के माध्यम से मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी युवाओं को अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना चाहिए। युवाओं को राजनीति के साथ जोड़ने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए और युवाओं को उसमें आगे भी आना चाहिए।
युवा संसद में बड़ी संख्या में जिले के युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति बनाई जाएगी। उन्होंने आज शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक में नीति प्रारूप तैयार करने को लेकर विचार विमर्श किया है। नेगी ने बताया कि राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क में कई गुणा वृद्धि कर लोगों व श्रद्धालुओं पर भारी बोझ डाला है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि माता बालासुंदरी मंदिर सहित राज्य में स्थित शक्तिपीठों में दर्शनों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पहले प्रवेश शुल्क देना होगा। बिंदल ने कहा कि ये भारी भरकम प्रवेश शुल्क सही नहीं है और इससे पर्यटन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
बहुत बड़ी देन इस कांग्रेस सरकार की एंट्री टैक्स को मल्टीपल रेट में बढ़ाया गया है। कालाम से एंटर होने वाली गाड़ी जो 70 रुपए में अंदर आती थी, अब वो 170 रुपए में अंदर आएगी। लाखों लोग तीर्थयात्री माता बालासुंदरी के दरबार में आते हैं, लाखों तीर्थयात्री माता नैना देवी के दरबार में आते हैं, माता चिंतपूर्णी के दरबार में आते हैं, माता कांगड़ा के दरबार में आते हैं, और ये सारे क्षेत्र वो हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उसको बड़ी मात्रा में सड़क का टैक्स देना पड़ेगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के कोटखाई इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इनमें कोटखाई में राजस्व रिकॉर्ड रूम, पशु औषधालय और टाहू कंथाड़ी पंचायत में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी शामिल है। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोटखाई के ग्रामीण परिवेश में केंद्रीय विद्यालय खोलना एक बड़ी उपलब्धि है। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आज से गांधी शिल्प मेला शुरू हुआ, जिसमें देश के लगभग 18 राज्यों के कुशल शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 8 मार्च तक चलने वाले इस शिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का मौका मिल रहा है। चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने पांगी प्रशासन से किलाड़ में सुलभ शौचालय की सुविधा फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी के कारण 2 महीने पहले किलाड़ में सुलभ शौचालय बंद किया गया था, लेकिन अब बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में किलाड़ आने जाने वाले लोगों को शौचालय की सुविधा न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला नगर निगम के एक भाजपा पार्षद को महापौर द्वारा निलंबित करने के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर महापौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने आरोप लगाया कि महापौर का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे गैर कानूनी तरीके से पद पर बने हुए हैं। उन्होंने भाजपा पार्षद बिट्टू पाना के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया।
जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कांग्रेस के पार्षदों द्वारा बिट्टू कुमार पाना जी और सभी पार्षदों के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है, उसकी कड़ी निंदा करती है। कार्यकाल मेयर का पूरा हो चुका है, वो इस पद पर अभी भी जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो अपना पद छोड़े। एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह से पेश आना, उनके साथ बदतमीजी करना, और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे जो उनके कार्यकर्ता है जो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलहाल उनको चेतावनी देनी चाहिए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर जताई चिंता, कहा भारत बातचीत के माध्यम से विवादों के समाधान का पक्षधर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से नई दिल्ली में की भेंट, राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत मांगा वित्तीय पैकेज। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में हिमाचल को अगले वित्त वर्ष के बजट में होगा 20,365 करोड़ रूपये का लाभ। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति बनाएगी राज्य सरकार और कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में गांधी शिल्प मेला शुरू 18 राज्यों के शिल्पकार ले रहे हैं भाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।